ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் ஈஷா வாசியோபனிஷத், பிரசன்டட் பை சுவாமினி சந்தோஷி மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
ஹரி ஓம். பவித்ர திவசமே மாதா கா ஆகமன் ஜீவன் மே குஷி லாகே ரக் தேதா ஹை. और उसी तरह आज माताजी का यहां आगमन जीवन में खुशी तो लाएगा ही, मगर सत्संग में जो आनंद हमें देगा वह एक अद्भुत रहेगा, क्योंकि एक पवित्र त्यौहार के साथ साथ हम माताजी के साथ चलेंगे. आप सबकी आपके साथ आपके सबके अनुलक्षी जो भी यह कार्यक्रम ईशावासी उपनिषद के हिसाब से हो रहा है, उसमें समय से पधार कर यह आनंद ले, ऐसी आप सबसे विनंती. आप सबकी तरफ से मुझे माता जी को वंदन करते हुए ईशावासी उपनिषद, उस पर माता जी द्वारा प्रवचन होगा. हरिओम.
बोलिए सच्चिदानंद भगवान की हरि ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तवन्ति दिव्येस्तमे वेदैशाङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यमशामगा ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तन्न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः. देवाय तस्मै नमः. नारायणं नरश्चैव नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरे. इन्द्रियाणाम् अधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्तिदेव्ये नमो नमः. व्याप्तिदेव्ये नमो नमः. ॐ भद्रं नो अपि वातय मनः. ॐ शान्ति शान्ति शान्ति. शिवोऽहं शिवोऽहं सच्चिदानन्दोऽहं 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 सचोऽहं शिवोऽहं सच्चिदानन्दोऽहं शिवोऽहं 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 सच्चिदानन्दोऽहं सत्यं ज्ञान अनन्तं ब्रह्म सत्यं ज्ञान अनन्तं ब्रह्म सत्यं ज्ञान अनन्तं ब्रह्म satyam jnana anantam brahma satyam jnana anantam brahma satyam jnana anantam brahma satyam jnana anantam om shanti 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 om anant koti brahmand nayak sad ghan chid ghan anand ghan भगवान की असीम अहेतु की कृपा के साथ प्रेम प्रिय आश्रम के इस पावन सभागार में प्रातःकाल की इस वेला में बैठकर आप सब लोग ब्रह्म चिंतन करते हैं। ये सब का ही बड़ा सौभाग्य है। इसी श्रृंखला में पिछले वर्ष से ईशावास्य उपनिषद पर हम लोग विचार कर रहे थे। मुझे स्मरण है कि पिछले साल 10 मंत्र तक हम लोग पहुंच पाए थे और आगे के 8 मंत्र और रह गए थे, जिसके लिए चर्चा हुई थी कि दोबारा आएंगे तो इसे पूरा करेंगे। 11वां मंत्र है ईशावास्य उपनिषद का। उपनिषद बहुत छोटी है और बहुत महत्वपूर्ण है। यदि ये 18 मंत्र हमारे जीवन में गंभीरता पूर्वक विचार करने में आ जाएं, तो मैं समझती हूं कि संपूर्ण वेद वेदांत का जो सार है, निष्कर्ष है, तत्व है, और भगवान श्री कृष्ण का 18 अध्याय में 700 श्लोकों में जो ईशावास्य उपनिषद का विस्तार है, और उन सब का जो सार रूप भगवान का है, शरणांगति भाव, सर्वधर्मम परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, ये जो शरणांगति है भगवान की, वो हमारे लिए जीवन में उस भाव पर, उस स्थिति पर, उस समर्पण पर के द्वार पर ला करके हमें ये ईशावास्य उपनिषद पहुंचा देती है। इसलिए इस ईशावास्य उपनिषद के माध्यम से हम लोग विचार कर रहे थे। विद्याम च विद्याम च यदस्दोयम् भयम् सहम् अविद्याया मृत्युर्तिर्वा विद्याया अमृतम् अनुपश्यते। विद्या च अविद्या च, विद्या के द्वारा, विद्या के द्वारा और अविद्या के द्वारा, इन दोनों को साथ साथ जो जानते हैं, विद्या उपासना है, अविद्या कर्म है। कर्म और उपासना को जीवन में दोनों को साथ साथ, जीवन के साथ कर्म माने हमें कर्मशील होना चाहिए, जीवन में आलस्य और प्रमाद को हम जीते, आलस्य और प्रमाद को समाप्त करके, क्योंकि कहीं ऐसा न हो जाए कि प्रमाद के अधीन होकर, आलस्य के अधीन होकर हम अपने मार्ग को भूल जाएं, अपने पुरुषार्थ को भूल जाएं। कभी कभी ऐसा होता है कि एक छोटे से उदाहरण से समझें कि एक बार एक किसान बड़े प्रेम के साथ खेत में हल चलाता था। उसका रोज का काम था खेत को हल चलाना, फसल पैदा करना, अन्न उत्पन्न करना, उससे उसकी जीविका चलती थी, परिवार चलता था, और उससे वो उसका जीवन निर्वाह होता था। दिन के एक दिन की घटना है कि प्रतिदिन तो उसकी पत्नी, वो सुबह खेत में बैल लेकर पहुंच जाता है और खेत में हल चलाता है, दोपहर होने तक उसकी पत्नी उसके लिए कलेवा भोजन लेकर के खेत में पहुंचती है, बैल को वो एक पेड़ की छाया में खड़ा कर देता है, बैल अपनी घास खाते हैं और वो भोजन करता है, पानी पीता है, कुछ देर आराम करके सुस्ता करके फिर वो अपने खेत में हल चलाने के कार्य में लग जाता था। एक दिन की ऐसी घटना हुई कि वो जब खेत में हल चला रहा था, उसे एक अचानक बड़ा सा पक्षी उधर से दौड़ता हुआ आया और उसके शरीर के साथ टकर गया। टकर के जमीन में जैसे गिरा तो उस पक्षी की मृत्यु हो गई। और बड़ा भारी भरकम पक्षी था और उस पक्षी को ले गया बाजार में, उसने बेचा तो उसे बढ़िया पैसा मिल गया। जब उसे पैसा बढ़िया मिल गया, बढ़िया आमदनी हो गई, तो उसके दिमाग में ये बात आ गई कि इसमें तो कुछ करना नहीं पड़ता, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, पसीना नहीं बहाना पड़ता और परिश्रम नहीं करना पड़ता है। ये तो अकस्मात ऐसे पक्षी मिल जाए तो धन बहुत जल्दी मिल जाता है, उससे ज्यादा आमदनी होती है। तो उसने फिर खेत में हल चलाना छोड़ दिया, अपने कार्य को, कर्म को छोड़ दिया, कर्म को छोड़कर आकस्मिक इस लाभ को प्राप्त करने के लिए वो बन बन घूमने लगा। और ऐसी ऐसी घटना रोज हो जाएगी ये संभव थोड़ी है, ऐसा रोज हो जाएगा ये थोड़ी है। तो परिणाम ये हुआ कि धीरे 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 आप समझ सकते हैं कि जब व्यक्ति अपने कर्म से हट जाएगा तो उसकी आर्थिक स्थिति क्या होगी, उसका जीवन निर्वाह करना कितना कठिन हो जाएगा। धीरे 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 करते करते वो इतना दुखी हो गया, इतना कष्टमय जीवन हो गया कि अकस्मित लाभ लेने के भरोसे में उसने अपने स्वकर्तव्य का त्याग करने के कारण उसे बहुत सारा दुख उठाना पड़ा। दृष्टांत केवल इतना था कि व्यक्ति जब ऐसी कोई बात मन में आ जाती है कि बस हम तो ऐसा कुछ करेंगे, ऐसी उपासना करेंगे, ऐसा भगवान को रिझाएंगे, ऐसा मंत्र सिद्ध करेंगे, ऐसा जाप करेंगे कि हम ऐसा आकस्मिक हमें ऐसा लाभ मिल जाएगा, बहुत से लोग अपने कर्म को छोड़ करके और अपनी भावनाओं को लेकर किसी और मार्ग की ओर बढ़ जाते हैं। तो वो लोग भी जीवन में कष्ट प्राप्त करते, उन्हें भी दुख होता है। इसलिए व्यक्ति को अपने कर्तव्य कर्म को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, उसमें कभी आलस्य और प्रमाद नहीं करना चाहिए, स्वकर्तव्य का पालन करते हुए। और क्योंकि प्रमाद और आलस्य ही, प्रमाद के लिए कहा कि यही तो मृत्यु है, महाभारत के अनुसार व्यक्ति के जीवन में मृत्यु किसकी है, बोले जहां आलस है और प्रमाद है वही मृत्यु है। और जिसने अपने जीवन में ये आलस्य और प्रमाद को जीत लिया है उसे जीवन में बहुत बड़ी मृत्यु को जीत लिया, उसने बहुत बड़ी जीत प्राप्त कर ली। क्योंकि मृत्यु होती तो इस नश्वर इस जड़ शरीर की है ना, और तो किसी की मृत्यु नहीं है। इसलिए आलस्य को जीते, और यही कारण है कि जो लोग अपने पुरुषार्थ में आगे रहे, यही उपासना है, नारायण विद्या है। अर्थात जो लोग निरंतर अविद्या च माने जो कर्म रूपी अविद्या को और विद्या रूपी उपासना को, विद्या रूप उपासना है और अविद्या रूप कर्म है। तो कर्म कर्मेंद्रियों के द्वारा, क्योंकि इन अविद्या इसलिए कहा गया है कि इनसे हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है, इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है वह ज्ञान पूर्ण नहीं होता, अधूरा होता है, और इसलिए वो अविद्या रूप है। और कर्म विद्या उपासना है, उपासना के द्वारा अमृतत्व की प्राप्ति, और अविद्या के द्वारा मृत्यु को प्राप्त करने वाली बात कही, मृत्यु त्रवा, अविद्या के द्वारा मृत्यु को पार करके माने प्रमाद और आलस को समाप्त करके, मृत्यु त्रवा मृत्यु माने प्रमाद और आलस उसको पार करके जो लोग कर्म में लगे रहते हैं अपने कर्म से जीत जाते हैं, उनकी मृत्यु नहीं होती है। मृत्यु पर भी मुझे एक बात याद आ रही थी, छोटा सा उदाहरण ही है कि एक बार एक अच्छा धर्मात्मा सेठ था, सेठ उसे एक अच्छे योग्य सेवक की आवश्यकता थी, अवस्था वृद्ध हो गई और शरीर को अब सेवक की आवश्यकता महसूस होने लगी, तो धर्मात्मा था, अच्छा था, ज्ञाननिष्ठ था, वो चाहता था कि मुझे कोई योग्य अच्छा सेवक मिले। तो उसने ये घोषणा की कि मुझे अच्छे सेवक की आवश्यकता है, प्रत्येक बहुत सारे लोग सेवा के लिए अपने आप को इसका उम्मीदवार मान करके, प्रतीक्षाई मान करके सब लोग वहां इकट्ठा हो गए। तो उसने उन लोगों में कहा कि देखो मेरी एक शर्त, मेरी परीक्षा, उसने कहा कि उसके घर के कुछ दूर से एक शमशान के लिए यात्रा निकलती थी। उसने कहा कि जाकर के जो ये एक से कहा, सबसे ये कहा कि जाकर जो ये बात पता करके लाएगा कि जो जाने वाला आदमी है ये कहां जा रहा है, जो गया है ये स्वर्ग जाएगा या नर्क जाएगा, ये कहां जाएगा, और इसका पता लगा के आओ, पूछ के आओ। जो ये पता पूछ करके ठीक लेकर के आ जाएगा वही मेरी सेवा में उसी की नियुक्ति होगी। तो जब उसने ये शर्त रखी तो एक व्यक्ति गया, सोचने लगा कि मैं कैसे पता करूं कि यह स्वर्ग जाएगा या नरक जाएगा। उसके दिमाग में ये प्रश्न होने लगा कि उसने जाकर वहां लोगों से पूछा, भाई ये जो जिसकी तुम यात्रा सब यात्रा अंतिम यात्रा लेके जा रहे हो, ये व्यक्ति आखिर कहां जाएगा, स्वर्ग जाएगा या नरक जाएगा, उन लोगों से पूछा। तो उन्होंने कहा भाई बात ये है, तुम जाओ, देखो ये बात प्रश्न हम कैसे तुम्हें बता सकते हैं कि स्वर्ग जाएगा या नरक जाएगा, ये हमें तो नहीं मालूम, इसलिए तुम ये स्वर्ग जाता है ये नरक जाता है ये जानना चाहते हो तो तुम इसके पीछे पीछे चले जाओ, तो तुम्हें मालूम पड़ जाएगा कि ये कहां जाएगा, हम तुम्हें इसका क्या उत्तर दे सकते हैं। उच्च बेचारा चुप हो गया। और दूसरा एक व्यक्ति था, वो जब गया तो उसने किसी से कुछ कहा नहीं, कुछ बोला नहीं, वो सबके पीछे पीछे चलता रहा, और पीछे पीछे उनके साथ चलता हुआ तो लोग आपस में चर्चा कर रहे थे कि ये व्यक्ति तो बहुत सहनशील था, उदार था, गरीबों के ऊपर दया करने वाला था और बड़ा ही संयमी था, ज्ञानवान होते हुए भी मौन रखता था, और इसने बचपन से ब्राह्मण था, बचपन से युवा अवस्था में इसने बड़ी अच्छी तपस्या की थी, और ये हमेशा जो लोग बेसहारा थे उनका ये सहारा बनता था, और इसके लिए तो बहुत अच्छे इसके कार्य थे, बहुत अच्छे कार्य थे, उसकी बड़ी ही प्रशंसा हो रही थी। तो वो व्यक्ति मन में सोचने लगा कि जिसकी इतनी प्रशंसा हो रही हो और जिसके पीछे लोग इतने आंसू बहा रहे हों, जिसके लिए इतनी लोग तारीफ कर रहे हों जाने के बाद, तो निश्चित रूप से ये व्यक्ति तो स्वर्ग का ही अधिकारी होगा। मन में ये बात सोच करके वापस सेठ जी के पास आया, कहा महाराज वो तो स्वर्ग गया। स्वर्ग गया, बोले तुम्हें कैसे पता? बोले मुझे ऐसे पता है कि विष्णु पुराण में ये लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति दरिद्रियों पर, जो व्यक्ति दरिद्रियों के ऊपर दया करता है और जो व्यक्ति युवा अवस्था में तप करता है, जो व्यक्ति ज्ञानी होते हुए भी मौन व्रत धारण करता है और जो हमेशा दूसरों की सहायता करता है, वो व्यक्ति मरणोपरांत भी उसका यशस्वी शरीर, वो मरता नहीं है, उसका शरीर न रहने पर भी वो सदैव जीवित ही रहता है और जाने पर भी उसे स्वर्ग आदि की ही प्राप्ति होती है, ये उसका प्रमाण है। तो धर्मात्मा था, सेठ था, समझ गया, उसने अपनी उस कार्य पर उस व्यक्ति की नियुक्ति कर दी। तो कहने का उदाहरण मेरा ये था कि वास्तव में व्यक्ति कहां जाता है ये निर्णय कौन करता है, ये निर्णय उसके यशस्व इसके पीछे उसका कैसा व्यक्तित्व तो रहा है, कैसा आचरण रहा है, कैसा उसका चरित्र रहा है, चरित्रवान व्यक्ति ही। याद रखना, ना विरतो दुश्चरित्रा नाम, ना शांतो ना समाहित। कठोपनिषद कहती है जिसका चरित्र अच्छा नहीं है, मतलब कर्म उपासना से अभी कर्म से अभिप्राय क्या है, कर्म से अपने चरित्र का निर्माण करो, कर्म से अपने चरित्र का निर्माण कर। कर्म किसके लिए? बोले चरित्र निर्माण के लिए। जब चरित्र की शुद्धि होगी, आचरण की शुद्धि होगी, तो तब विचार से मन की शुद्धि होगी, नारायण भावनाओं की शुद्धि होगी, ज्ञान के विद्या की अर्थात उपासना होगी। यदि चरित्र ही सही नहीं होगा तो उपासना क्या होगी, मन की शुद्धि विद्या क्या होगी। इसलिए विद्या क्या है? उपासना है। और विद्या क्या है? विद्या है श्रवण, मनन, चिंतन, जिससे इसको हम विद्या कहते हैं, जिस विद्या के द्वारा सद असत का विवेक होता है, उसका नाम है विद्या, माने ये उपासना है। उपासना के द्वारा, अविद्या के द्वारा चरित्र की शुद्धि है, और विद्या के द्वारा उपासना है अंतःकरण की शुद्धि है। भावना और उपासना, चरित्र, जब चरित्र हो और उसमें भावना भी हो, तब तो बात दोनों साथ साथ होती है और बात बन जाती है। खाली भावना ही भावना है, चरित्र कुछ नहीं है। एक व्यक्ति बैठ करके भाव करता है, भाव से वो भगवान को भज लेता है, और भाव से ही भगवान को याद कर लेता है, भाव से ही वो भगवान को भोग लगा लेता है, भाव केवल भाव ही करता है बस, परंतु उसके आचरण में कुछ नहीं है, उसके कर्म में कुछ नहीं है, उसकी कोई कर्म में प्रवृत्ति नहीं है, इससे उसकी तृप्ति, उसकी कल्याण नहीं है, कल्याण होने वाला नहीं है, वो मृत्यु को पार कर सकने वाला नहीं है। इसलिए उपनिषद कहती है कि कर्म तो बहुत, कर्म क्या है? बोले कर्म वो है जिस कर्म में न तो प्रमाद है और केवल चरित्र का निर्माण हो, चरित्र निर्माण हो, माने हमारा आचरण अच्छा होना चाहिए, हमें देखें, हमारी देखने में सात्विकता हो, हमारे सुनने में सात्विकता हो, हमारे बोलने में सात्विकता हो, हमारे चलने में सात्विकता हो, हमारे व्यवहार में सात्विकता हो। जब तक हम इन सब में सात्विक भाव नहीं लाएंगे, निरंतर राजस और तामस इन दोनों भावनाओं से युक्त हो, इन दोनों में ही लिप्त रहेंगे, इन्हीं में भोगों में लगे रहेंगे, तो बात नहीं बनेगी। इसलिए नारायण, छोटी सी बात है पर बहुत महत्वपूर्ण है, हमेशा से मैं एक बात कहती हूं कि कभी सोचो तो सही अपने लिए कि हम खाते क्या हैं, कभी सोचो तो सही हम देखते क्या हैं, कभी सोचो तो सही हम सुनते कहाँ हैं, अब कभी सोचो कि हम बैठते कहाँ हैं, हमारे हम बैठते कहाँ, बैठने से पहले उस जगह को देखो। नारायण, जिसका वस्त्र धुला हुआ हो वो बैठने से पहले जगह देखता है कि साफ है या नहीं है, तभी बैठते हैं। तो उसी तरह बैठने से अभिप्राय मेरा यह है कि आपकी संगति किन के साथ में, बैठते कहाँ बैठते हैं, आप मधुशाला में बैठते हैं या सिनेमा हॉल में बैठते हैं, या जो लोग निरंतर विषय भोगों के साथ ईश्वर विमुख लोग हैं उन लोगों के साथ में आप बैठते हैं, या भगवत भक्तों के साथ आप बैठते हैं। बैठने से अभिप्राय ये, आपकी संगति, जिनकी आप संगत करते हैं वो कैसे लोग हैं, किनके साथ आप बैठते हैं, वो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बात है। इसलिए क्योंकि जैसी करो संगति वैसी पड़े आए रंगति, धीरे धीरे संग का बहुत बड़ा प्रभाव है ना, संग का ही तो प्रभाव है कि आप चूल्हे के ऊपर एक भगोने में गर्म पानी रख देते हैं, अग्नि के संग से शांत शीतल जल भी धीरे 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 संगति के कारण उसके अंदर भी दाहकता आ जाती है, वो भी गर्म हो जाता है, उसमें भी उस पानी में भी हाथ जलने लगता है। तो ये गुण उसकी संगति के साथ, अग्नि के संग से जल का अपना स्वाभाविक स्वभाव नहीं है, पर स्वभाव न होने पर भी अग्नि के संग से उसमें ये गुण आ जाता है। उसी तरह से हम जिन लोगों के साथ में उठते बैठते बोलते खाते रहते हैं उनकी संगति का प्रभाव हमारे चित्त के ऊपर जरूर आता है। इसलिए हमें देखना चाहिए कि हम बैठते कहाँ हैं और हम कान से रात दिन सुनते क्या हैं। इन कानों से भगवत कथा सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं। मैं कहती हूँ कि प्रेमपुरी की संग के यहाँ के आश्रम के सत्संगी आप लोगों का सौभाग्य है कि आपको अच्छा सुनने को मिलता है, कि सुबह सुबह के समय में आप भगवान का अध्यात्म का चिंतन करते हैं। दिन में भी मेरा विश्वास है कि आप सब लोग अच्छा सुनते होंगे। तो कहने का अभिप्राय ये है कि हम कानों से सुनते क्या, पर निंदा, पर चुगली और दूसरे का ये सब सुनते, इससे हमारे कोई चरित्र का निर्माण होने वाला नहीं है, इससे कोई हमारा आचरण शुद्ध होने वाला नहीं। हमेशा मैं कहती हूँ कि आचरण शुद्ध हो, हम आचरण के उपासक, हम चित्र के उपासक नहीं है, हम लोग चरित्र के ऊपर। हमारे पूर्वजों ने हमें ज्यादा चरित्र निर्माण पर बल दिया नारायण, और जिनका चरित्र जिनका उज्जवल रहा है, जिनका चरित्र उज्जवल रहा है वही हमारे जीवन के लिए आदर्श रहे। इसीलिए हमारे घरों में चित्र टांगने की एक परंपरा है, चित्र पूजने की परंपरा है, हम लोग चित्र की पूजा करते हैं। लोग कहते हैं कि ये सनातनी लोग जो है ना चित्र पूजते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ चित्र नहीं पूजते हैं, हम चरित्र को पूजते हैं। चित्र देख करके, चरित्र का स्मरण करके अपने अंदर वो भावना लाते हैं कि हम इसका आचरण कर सके। इसलिए उनसे प्रेरणा लेने के लिए हम अपने चित्र को सामने रखते हैं। इसलिए नारायण चित्र रखना चाहिए। बोले चित्र कहाँ टांगते हैं, दीवार के ऊपर रखते हैं, ताकि जहाँ चित्र लगा हुआ होगा तो वहाँ दूसरा कोई चीज आने की गुंजाइश नहीं हो। खाली दीवार है तो कभी भी कुछ भी टंगने की संभावना हो सकती है। यदि उस दीवार में पहले से ही कोई मूर्ति लगी हुई होगी तो उसमें दूसरी किसी और चीज की लगने की गुंजाइश नहीं होती है। उसी तरह से यदि हृदय पटल में भगवान का चित्र आपका, असत महापुरुषों के आचरण का चरित्र आपके चित्त में अंकित होगा तो और संसार का कुछ और घुस सकेगा, उसमें ये गुंजाइश नहीं रह जाती है, ये बात नहीं रह जाती। इसलिए हृदय के चित्र पटल पर